सूक्ष्म जगत के परिशोधन हेतु गायत्री साधना के विशेष प्रयोग। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वातावरण का परिशोधन है जरूरी। मित्रों,
इस तरह सूक्ष्म वातावरण को सही किया गया और वह उद्देश्य पूरा हुआ जो भगवान राम को करना था, भगवान कृष्ण को करना था।
केवल महाभारत से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, केवल लंका जलाने और रावण को मारने से ही वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दूषित सूक्ष्म जगत को ऐसे साफ नहीं किया जा सकता था। इसके लिए भगवान राम ने यज्ञ किया, भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया।
आज फिर से वैसा ही समय आ गया है जबकि हमारा वातावरण बिगड़ रहा है और वायुमंडल भी बिगड़ रहा है। हमसे प्रकृति भी नाराज है, बार बार अकाल पड़ते हैं, पानी की कमी पड़ती है, विग्रह खड़े हो जाते हैं, विद्वेष खड़े हो जाते हैं, मारकाट खड़ी हो जाती है। यह सब वातावरण की प्रदूषण का प्रभाव है। वातावरण का परिशोधन करने के लिए आपकी इस संस्था ने 1,00,000 कुंडों के यज्ञों को करने का संकल्प किया था कि 1,00,000 कुंडों के गायत्री यज्ञ हों। उसका विभाजन किया गया है। 1,00,000 कुंडीय यज्ञ एक जगह करना तो संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके लिए हजारों बीघा जमीन चाहिए थी और बड़ा भारी प्रबंध करना चाहिए था।
दीपयज्ञों की शुरुआत। साथियों, हमने 1,000 कुंडीय यज्ञ किया था। उसकी व्यवस्था इतनी बड़ी थी कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर 1,00,000 कुंडीय यज्ञ कैसे होगा?
इसलिए 100-100 कुंडों के 1,000 कुंडों में उसके हिस्से बांट दिए गए, ताकि वह एक ही जगह प्रभाव पैदा न करके सारे हिंदुस्तान भर में और सारे संसार भर में पैदा करे। यह 2 वर्ष का कार्यक्रम रखा गया था कि 2 वर्षों में 100-100 कुंडों के 1,000 यज्ञ हो जाएंगे।
भगवान की बड़ी दया थी और आप सबका बड़ा सहयोग था कि वह संकल्प ठीक तरीके से पूरा हुआ।
1 वर्ष में उसका अधिकांश भाग पूरा हो गया और जो भाग बचा हुआ है उसको भी इस साल में निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे।
मित्रों, हमारे संकल्प न कभी अधूरे रहे हैं और न कभी अधूरे रहेंगे।
हमने कभी वे संकल्प नहीं किए जिसको कि हम अपनी सामर्थ्य से, अपने भगवान की सामर्थ्य से और अपने गुरु की सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकते। उस संकल्प को हम करते ही नहीं हैं। इसलिए वह संकल्प जिस प्रेरणा से किया गया, भगवान की बड़ी दया, भगवान की बड़ी कृपा है कि वह संकल्प पूरा हो गया। इससे हमारे वायुमंडल का संशोधन हुआ है। इसका सबूत आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि कैसी भयंकर दुर्घटनाएं थीं, कैसी काली घटाएं छाई हुई थीं, लेकिन वे काली घटाएं धीमी होकर के धीरे धीरे पानी की छोटी छोटी फुहारें छोड़ती हुई अपने आप में समाप्त हो गईं। यह एक बड़ा काम हमने कर लिया। पहले भी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन यह काम अपने आप में ऐसा था जिसका कि करोड़ों अरबों मनुष्यों के जीवन के साथ में सीधा संबंध था।
तो यह एक काम पूरा हुआ। अब इस गायत्री जयंती से एक नया कार्यक्रम शुरू होता है।
वह क्या है? वह कार्यक्रम यह है कि 24,00,000 यज्ञ घर घर में करने का नया संकल्प है।
पहले सामूहिक यज्ञ हुए थे, हजारों आदमी इकट्ठे हुए थे और उन हजारों आदमियों की व्यवस्था करनी पड़ी थी।
हजारों रुपयों की आवश्यकता पड़ी थी। तब ये 100-100 कुंडीय यज्ञ हुए थे, पर अब जो नया कदम उठाया गया है वह प्रत्येक घर में घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए, घर परिवार के लोगों की कलह को समाप्त करने के लिए, घर के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाओं और वातावरण पैदा करने के लिए नया कदम उठाया गया है। ये कदम क्या हैं?
इसमें 24,00,000 घरों में, 24,00,000 कुटुंबों में एक एक कुंड का छोटा सा यज्ञ होगा।
उसको पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पुरुषों को फुर्सत न हो तो महिलाओं को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके, जो पढ़ी लिखी एवं समझदार महिलाएं हैं, वे हर घर में जाकर के इन यज्ञों को बड़ी आसानी से करा सकती हैं। इनमें क्या करना होगा?
ये दीपक यज्ञ होंगे। दीपक यज्ञ कैसी?
दीपक यज्ञ इस तरीके से कि आप एक थाली लें और 5 जगह 5-5 धूपबत्तियां लगा लें। 5 खंडों में 5-5 जगह 25 धूपबत्तियां विभाजित कर धूपदानियों में लगा दें एक और 5 दीपक जला दें। इस तरह धूपबत्तियों में से हवन सामग्री निकलती है और दीपक में से घी निकलता है। दोनों को मिला देने से वही उद्देश्य पूरा हो गया जो आप छोटे छोटे यज्ञों से पूरा करते हैं। बड़े यज्ञों में बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ता है, वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं। चीजों के संग्रह के बिना काम नहीं बनता, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। जब 1,000 कुंडी पर यज्ञ किया करते थे तो उसमें महीनों समय लग जाता था। 100 कुंडीय यज्ञ करने में भी महीनों समय खर्च हो जाया करता था, लेकिन जब हमारी गाड़ियां सारा सामान ले करके गईं तो काम एक एक दिन में ही पूरा हो गया जो महीनों में पूरा होना था। इसी प्रकार से घरेलू यज्ञों की जो श्रृंखला चलने वाली है उसमें धूपबत्तियां जो कहीं भी मिल जाती हैं और दीपक के लायक घी किसी किसी के भी घर में होता है।
दीपक और धूपबत्तियां जला करके 24 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए और समझ लीजिए कि घी की 24 आहुतियां हो गईं, हवन सामग्री की आहुतियां हो गईं और छोटा सा एक घरेलू पारिवारिक यज्ञ हो गया। 24 लाख पारिवारिक यज्ञों का संकल्प। मित्रों,
इस छोटे से पारिवारिक यज्ञ को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
शुरू में आप स्वस्तिवाचन बोल लीजिए, कलश स्थापना कर लीजिए, कलश स्थापन के मंत्र बोल लीजिए। इसके बाद में 24 गायत्री मंत्र बोलें। 24 गायत्री मंत्र में हमारे दो उद्देश्य निहित हैं।
एक तो यह कि आप लोगों को गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो जाए और एक आप लोगों के बोलने के साथ साथ में हमारी वाणी का भी समावेश हो जाए। हमारी कई वाणियां हैं। आपकी तो एक ही वाणी है, बैखरी वाणी।
हमारे पास मध्यमा वाणी भी है, परा वाणी भी है, पिशंती वाणी भी है।
इन चारों वाणियों को मिला करके हम मंत्र बोलते हैं।
तो 24 मंत्र हम बोलेंगे और हमारे साथ साथ ही आप भी बोलना शुरू कर दीजिए।
इस तरीके से समझिए कि 24 मंत्र 24,000 मंत्रों के बराबर होंगे, क्योंकि उसमें हमारी वाणी का समावेश है। आजकल हमारी वाणी रुकी हुई है, क्योंकि हम किसी से बोलते नहीं हैं। संयोगवश कोई एकाध व्यक्ति आता है तो उससे बात कर लेते हैं, वरन हम एकांत में रहते हैं, मौन रहते हैं।
अपनी वाणी को हमने ज्यादा सामर्थ्यवान बना लिया है।
हमारी अपनी वाणी के साथ साथ में आप लोग भी बोलेंगे तो एक यज्ञ पूरा हो जाएगा।
इस तरह एक छोटा सा यज्ञ हो गया। यज्ञ के साथ साथ में युग निर्माण सम्मेलन भी होते रहते हैं। पहले राष्ट्रीय एकता सम्मेलन भी हुए थे, तो यज्ञ के साथ में ज्ञानयज्ञ भी जुड़ा हुआ था। अतः आपको ज्ञानयज्ञ भी करना पड़ेगा। ज्ञानयज्ञ कैसे होगा?
इसका भी हमने इतना सरल तरीका बना दिया है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसमें संगीत एक और व्याख्यान दो बातें सम्मिलित हैं। संगीत के लिए टेप तैयार किए गए हैं, जिससे माताजी एवं उनकी देवकन्याओं का स्वर है।
माताजी गाएंगी, देवकन्याएं गाएंगी। 15 मिनट तक आपको यह संगीत सुनना पड़ेगा।
यह देव संगीत है, इसे सामान्य लोगों के गाने वालों के कंठों से तुलना न कीजिए।
ये विशेष है।
इसे आप हर तरह का मंत्र संगीत बोल सकते हैं।
संगीत के साथ ही व्याख्यान की भी आवश्यकता पड़ेगी।
इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप इस टेप को, जो आप सुन रहे हैं, सुना दीजिए।
यह आधे घंटा का पहला टेप है। यह हमारा व्याख्यान है। हम कहीं व्याख्यान देने तो जाते नहीं।
यहाँ शांतिकुंज में भी हम स्टेज पर नहीं जाते हैं, इसलिए हमने आपके लिए अपना व्याख्यान टेप करके आपको भेजा है, ताकि आप आसानी से हमारा नवीनतम भाषण सुन लें। यह इसी गायत्री जयंती और गुरु पूर्णिमा के बीच में दिया हुआ भाषण है।
इसमें पुराने भाषणों की अपेक्षा शक्ति ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है, प्राण ज्यादा है, ओज ज्यादा है।
इसलिए यदि इसे आप सुनेंगे तो आपका मन, अपनी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
आधा घंटे का यह व्याख्यान सुनकर आप जरूर प्रभावित होंगे। इस तरीके से यह एक घंटे का कार्यक्रम है, आधा घंटे का व्याख्यान, 24 गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ और 15 मिनट का माताजी का संगीत। इसी बीच में यज्ञ का कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। पूरे एक घंटे के अंदर यह सब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।
24 धूपबत्तियों की कीमत थोड़ी सी होती है। 5 दीपक जलेंगे, उनकी भी कीमत थोड़ी काध रुपये की होती है। ज्यादा खर्च नहीं है। इस तरीके से एक पारिवारिक यज्ञ सस्ते में पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को 24 लाख यज्ञ करने हैं।
गायत्री परिवार के जो भी प्रज्ञापुत्र और उत्साही महिलाएं हैं, उन्हें अभी से संकल्प लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि 1000 घरों में, 1000 कुटुंबों में 1000 यज्ञ करके हम वहाँ के वातावरण का, वायुमंडल का संशोधन करेंगे और उसमें नवीन स्फूर्ति, नवीन चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न करेंगे।
यह आप लोगों का कर्तव्य है।
गायत्री जयंती का हमारा यही संदेश है और यही हमारा गुरु पूर्णिमा का संदेश है। पहली देव दक्षिणा, नशा मुक्ति। मित्रों,
एक काम और रह गया, बाकी सब समाप्त हो गए।
वह काम यह रह गया है कि आपको देव दक्षिणा देनी चाहिए।
देव दक्षिणा में आपको कुछ त्याग करना पड़ता है।
प्राचीन काल में इसको बलिदान कहते थे।
मध्यकाल में, बुद्ध काल में बलिदानों का ऐसा रिवाज हो गया कि देव दक्षिणा के जानवरों को काट कूट कर देवताओं को चढ़ाने लगे।
फिर ऐसा करने लगे कि नारियल चढ़ने लगे और कोई फल चढ़ाने लगे, लेकिन वास्तव में देव दक्षिणा भावनात्मक होनी चाहिए। केवल किसी वस्तु को देने से देवता क्या प्रसन्न होंगे? उनके यहाँ वस्तुएं क्या कम हैं?
स्वर्गलोक में कौन सी चीज की कमी है कि देवता जिस चीज को प्राप्त करना चाहे तो क्यों नहीं प्राप्त कर सकते?
देवता कोई अंधे, अपाहिज, गूंगे, लूले या कोई भूखे भिखारी थोड़े ही हैं। जो आप उन्हें सामान देंगे, मुर्गी बकरा देंगे, नारियल देंगे, तो उससे ही उनका काम चलेगा।
वस्तुतः देवताओं की दक्षिणा भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। देवता भावनाओं को पसंद करते हैं, बुराइयों को दूर करने को पसंद करते हैं। इस समय देव दक्षिणा के लिए हमने तीन चीजें आपके सामने रखी हैं, जिन्हें आप चाहें तो तीन तरह के आंदोलन भी कह सकते हैं। गायत्री के तीन चरण हैं और शरीर भी सत, रज, तम तीनों से भरा हुआ है। तीन लोक हैं, इसलिए हमने तीन देव दक्षिणा रखी हैं।
एक देव दक्षिणा त्यागने योग्य है। त्यागने योग्य क्या है?
एक त्यागने योग्य देव दक्षिणा यह है कि आप नशा बंद कर दीजिए। आप जो भी नशा पीते हों, भांग पीते हों, शराब पीते हों या और कोई नशीली चीजें लेते हों, तो आप उन्हें बंद कर दीजिए।
क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर विषैला मादा भरा रहेगा।
विषैले मादे के भरे रहने के बाद में फिर आपका शरीर इस लायक नहीं रहेगा, मन इस लायक नहीं रहेगा।
शरीर भी खराब हो जाएगा, बुद्धि भी खराब हो जाएगी, आपका परिवार भी खराब हो जाएगा, पैसा भी खराब हो जाएगा और आपका व्यक्तित्व घटिया हो जाएगा। घटिया व्यक्तित्व हो जाने की वजह से जो नया युग आने वाला है उसके लिए जो मूर्धन्य व्यक्तित्व चाहिए, मूर्धन्य भूमिका निभाने के लिए, वह आपके लिए संभव नहीं हो सकेगा। फिर आप कुछ कर नहीं सकेंगे। जब आपको परखा जाएगा तो नशा आपके मनोबल को गिरा देगा। नशा आपकी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर देगा।
इसलिए पहला आंदोलन इसी 24 लाख यज्ञों के साथ साथ में यह आरंभ होता है कि हमारे संपर्क में जो कोई भी नशा करने वाले लोग आए, वे नशा पीना बंद करें। जिन लोगों ने नशा पीना बंद कर दिया है या जो इससे आगे न पीने की प्रतिज्ञा करते हैं कि हमने न पिया है और न पियेंगे, तो वे अपना प्रतिज्ञा पत्र भर करके हमारे यहाँ भेज सकते हैं। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने देवताओं को दिया है या नहीं, पर देवता के नुमाइंदों के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हम आपके सामने हैं।
ऐसे प्रतिज्ञा पत्र आप यहाँ भेजते रहें तो यह देव दक्षिणा की बात होगी। दूसरी देव दक्षिणा, खर्चीली शादियां बंद हों। साथियों,
दूसरी बात एक और करनी है आपको। वह क्या करना है? बिना दहेज और बिना जेवर के ब्याह करना है। आप लोगों में से जो अपने को हमारा कहते हैं, गायत्री परिवार का कहते हैं, अपने को प्रज्ञा मिशन का कहते हैं, जो हमारे हैं, हमसे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, हमको गुरु मानते हैं, हमारे लेखों को पढ़ करके हमें विद्वान मानते हैं या जो कुछ भी मानते हैं, तो आप हमारा एक कहना यह मानिए कि ब्याह शादियों में जो धूमधाम होती है, इसको आप छोड़ दीजिए। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं, यह बात हमने लाखों बार कही है, दीवारों पर लिखवाए हैं, पुस्तकों में छापी हैं, हर जगह छापी है।
हिंदुस्तान में गरीबी का मुख्य कारण विवाह शादियां हैं।
आप चाहे जो काम कर लें, दुकान कर लें, खेती कर लें, व्यापार कर लें, नौकरी कर लें, परंतु सारी जिंदगी में जो कमाएंगे, अगर परिवार में 5-6 ब्याह हो तो प्रत्येक ब्याह में दोनों पक्षों को बेहद खर्च करना पड़ता है। लड़की वाले को दहेज देना पड़ता है और लड़के वालों को जेवर देना पड़ता है। जेवर और दहेज दोनों को देने की वजह से दोनों ही दिवालिया हो जाते हैं, दोनों ही खोखले हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और दोनों बेईमान हो जाते हैं।
हमारे समाज की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आमदनी बढ़ाना ही आवश्यक नहीं है, वरन यह भी आवश्यक है कि जो खर्चे हैं उनको कम किया जाए, खर्चों को घटाया जाए।
सबसे बड़ा खर्च एक ही है, ब्याह का। अगर हम इस खर्चे को निकाल दें तो फिर आप देखिए कि गरीबी मिटाओ का आंदोलन जो सरकार ने या दूसरे लोगों ने चलाया हुआ है, उसकी तुलना में खर्चीली शादियां हटाओ यह एक ही आंदोलन ऐसा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति में कायाकल्प कर सकता है। अगर आपको यह मालूम पड़ता हो कि इस काम में रुकावट डालने वाले सबसे ज्यादा आपके पड़ोसी, संबंधी या आपके मित्र होंगे, जो दकियानुसी ख्याल के होते हैं और कहते हैं कि पुराने ढंग का ही ब्याह होना चाहिए, ऐसी हालत से अपनी जान छुड़ाने के लिए यह अच्छा है कि 5 आदमी लड़की की ओर से और 5 आदमी लड़के वालों की ओर से, अर्थात दोनों ओर से 10 आदमी यहाँ शांतिकुंज चले आएं,
यहाँ ठहरें, खाना पीना खाएं।
यहाँ किसी बात का कोई खर्च नहीं है। यहाँ शादी ब्याह का संस्कार वैदिक रीति से, जैसा कि शास्त्रों की विधि से होना चाहिए, उसी तरीके से करा देंगे। तीर्थस्थान में किया हुआ यज्ञ, विद्वानी से किया हुआ यज्ञ, यहाँ माताजी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ यज्ञ हर हालत में फलेगा फूलेगा और उसकी संतानें हमेशा सुखी रहेंगी।
दाम्पत्य जीवन भी प्रेमपूर्ण, सफल रहेगा और उसके सभी घर गृहस्थी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
इसलिए आप लोग जो अभिभावक हैं, उनको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की शादियां बिना दहेज और बिना जेवर के करेंगे।
मित्रों, दहेज मिटेगा तो जेवर मिटेगा, जेवर मिटेगा तो दहेज भी मिटेगा, अगर जेवर नहीं मिटेगा तो दहेज भी नहीं मिटेगा, इसलिए दोनों को एक साथ ही खत्म करना चाहिए।
अगर आपके लड़के या लड़की वयस्क हो गए हों और बिना दहेज एवं जेवर के शादी ब्याह करना हो, तो आप यहाँ उनको लेकर कभी भी आ सकते हैं।
यहाँ 12 महीने का तीर्थ है, यहाँ मुहूर्त छंटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थ स्थान के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
यहाँ कोई भी संस्कार, जिसमें विवाह संस्कार भी शामिल है, कभी भी हो सकता है, बारहों महीने हो सकता है।
नवरात्र का अनुष्ठान क्वार और चैत्र की नवरात्रों में होता है, लेकिन शांतिकुंज की नवरात्र हमेशा जारी रहती है, 365 दिन जारी रहती है।
पहली से 10, 11 से 20 एवं 21 से 30 को यहाँ पर हमेशा नवरात्र है। जब कभी नवरात्र का अनुष्ठान करना हो तो आप यहाँ बड़े मजे में बड़े आनंद के साथ कर सकते हैं।
यह दूसरी बात हो गई। तीसरी, देव दक्षिणा सबको शिक्षा।
तीसरी एक और बड़ी बात है जो इसी आंदोलन के साथ शुरू कर रहे हैं। परिवारों का वातावरण बनाने के लिए जहां 24 लाख दीपयज्ञों का संकल्प ले रहे हैं, वहीं एक संकल्प यह भी ले रहे हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का संचालन हमको ही करना है।
हिंदुस्तान में 3/4 लोग बिना पढ़े लिखे हैं, 1/4 पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बिना गरीबी दूर नहीं हो सकती।
गरीबी और अशिक्षा दोनों सगी बहनें हैं। मिटेंगी तो दोनों मिटेंगी, रहेंगी तो दोनों रहेंगी।
गरीबी रहेगी तो अशिक्षा रहेगी और अशिक्षा रहेगी तो गरीबी रहेगी।
बच्चों की बात अलग है, उनके लिए तो सरकारी स्कूल खुले हुए हैं और वे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो 3/4 नर नारी रह जाते हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। हम में से गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसने कि अपने जीवन में कम से कम 5 व्यक्तियों को पढ़ा ना दिया हो। प्रौढ़ शिक्षा की पाठशालाएं जगह जगह खुल सकती हैं। अगले दिनों हमारा यह भी विचार है कि जब लोगों को वाराखड़ी, गिनती, पहाड़े वगैरह याद हो जाएं, तो इसके बाद में जो किताबें पढ़ाई जाएं, उनको हम यहाँ से लिखें।
उसमें मनुष्य जीवन की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं, नैतिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, इन सारी समस्याओं को मोटे मोटे अक्षरों में और संक्षेप में ऐसी पुस्तकें अभी 1-2 महीने में ही लिखेंगे। इससे प्रौढ़ शिक्षा जो है न केवल शिक्षा या साक्षरता रहे, वरन साक्षरता के साथ साथ में जीवन के, सामाजिक और जीवात्मा के, परमात्मा के, लोक और परलोक के अतिरिक्त और विषयों की शिक्षा इन छोटी छोटी पुस्तकों में ही समाविष्ट हो जाए।
इस तरीके से प्रौढ़ शिक्षा में 2 भाग हो जाते हैं, एक वह जिसको साक्षरता कहते हैं और दूसरी वह जिसको की नैतिक शिक्षा कहते हैं।
इन दोनों को मिला करके प्रौढ़ शिक्षा बनेगी। मित्रों, आप एक बार फिर समझ लीजिए,
24 लाख के दीपयज्ञों के संकल्प को पूरा करने में आप में से हर एक आदमी को योगदान देना है।
हमारी पत्रिकाओं के 5 लाख ग्राहक हैं।
इनमें से प्रत्येक ग्राहक को 5-5 घरों में दीपयज्ञ करने के लिए कहा जाए तो बड़ी आसानी से 24 लाख यज्ञ एक साल में हो सकते हैं। चलिए एक वर्ष में न होंगे तो 2 वर्ष में भी कर सकते हैं। अभी हमारे 100 कुंडीय यज्ञ भी तो 2 वर्ष में हुए हैं। एक साल में यह संकल्प पूरा कर लें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। 2 साल में हमें 24 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाना है, सुयोग्य बनाना है। इसके लिए आप में से हर व्यक्ति संकल्प ले कि हम साक्षरता बढ़ाएंगे। 1, ब्याह शादी बिना दहेज जेवर के करेंगे और शांतिकुंज में करेंगे। 2, और तीसरा यह कि हम नशा न पियेंगे और पीते रहे हों तो छोड़ देंगे, कभी नहीं पियेंगे।
यह 3 देव दक्षिणा हुई।
इन 3 देव दक्षिणाओं की हमें आपसे आवश्यकता है। जो यज्ञ हों उनमें से इन तीनों में से न सही तो कम से कम 1 देव दक्षिणा तो हमको मिलनी ही चाहिए।
यही हमारी नई प्रेरणा, नया संकल्प, नई शिक्षा, नई प्रार्थना है कि आप 24 लाख दीपयज्ञों को पूरा करें। गायत्री परिवार की कोई भी पढ़ी लिखी महिला और पढ़ा लिखा पुरुष इस कार्य में पीछे न रहे।
खासतौर से पढ़ी लिखी महिलाओं से विशेष रूप से प्रार्थना है कि उनके लिए समय भी रहता है और वे इसे संपन्न भी कर सकती हैं। पुरुष इसमें सहयोग कर सकते हैं। यही प्रार्थना है कि आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे और नए संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे।
गायत्री जयंती 1987 समाप्त।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय,
ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम मृत्युमामृतंगमय, ओम शांति।